Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala khatamun nebiyyin. Amma ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhar rasulu kulu minet tayyibati ve amelu saliha. Sadakallahu aliyyul azim ve sadaka rasulun nebiyyil kerim. Muazzez khawatin ve zirat, helal اور حرام رزق کے بارے میں بات جاری ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بات سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام پورا ہو گیا, ہم نے اچھی بات سن لی. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اچھی بات پر عمل بھی کرنا ضروری ہے. جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بتا دیں کہ جو جاننے والے ہیں کیا وہ نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ابھی یہاں پر فرمایا یا ایو الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تو اور یہ بھی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو پتہ چلا کہ مطلوب جو ہے وہ عمل ہے اور اس کا ذریعہ علم ہے. بغیر علم کے پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے عمل کرنا چاہیے, لہذا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور جیسے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو علم حاصل کرنا ضروری ہوا, فرض ہوا, لیکن اس کا بنیادی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ عمل صالح ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص رزق حلال اور رزق حرام اس کے بارے میں اگر جاننے لگے تو یہ بہت مبارک علم ہے. معاملات کا جو علم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ معاملات کے ذریعے سے ہم اپنے عمل کو صحیح کر سکتے ہیں اور ہمیں حلال رزق مل سکتا ہے. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے سود کھایا ہے, کیا کیا, جائز ہے ناجائز ہے, وہ تمام کام کرنے پڑیں گے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس دور کے مجدد ہے تو وہ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں اس سلسلے میں جو انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب تھے, وہ سودا ایک دکاندار سے لیتے تھے کانتے میں اور آخر میں پھر کانتا یعنی وہ کر لیا جاتا, کلیئر کر دیا جاتا. یہ طریقہ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے. تو ایک دن ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی, تو جب انہوں نے سودا لے لیا تو چھوٹی بچی کی نظر ایک چاندی کی گڑیا پر پڑی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے لیے چاندی کی گڑیا خریدو, کیوں بچے تو ایسی چیزیں مانگتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ دکاندار کو کہ دے دیں ان کو. تو انہوں نے کہا جی پیسے. انہوں نے کہا بس کھاتے میں لکھ لو. کہا حضرت کھاتے میں تو لکھ لوں گا, لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جائز بھی ہے. فوراً مولوی صاحب کو مسئلہ یاد آ گیا, او یہ تو چاندی ہے, چاندی تو اصل مال ہے, تو اس کا تو فوراً ادائیگی ضروری ہے, ہاتھ در ہاتھ, ورنہ سود ہو جائے گا. تو اس پر انہوں نے کہا جی بھی نہ دے. دکاندار نے کہا کیا اس کو جائز طریقے سے لینے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ اس وقت مولوی صاحب ذرا پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سارے علم مستاجر تھوڑا ہوتا ہے, بعض دفعہ یاد نہیں ہوتا, لیکن علم تو اصل میں وہی ہوتا ہے جو مستاجر ہو. اب گاڑی انسان چلا رہا ہو اور گیئر وغیرہ کا پتہ نہ ہو, ہاں جی, تو اب اگر ضرورت پڑ جائے تو کسی پوچھے گا تو نہیں کہ میں کون سا گیئر لگاؤں. ظاہر مطلب ہے کہ اس وقت تو عمل کرنا پڑے گی, اس وقت تو مستاجر ہونا چاہیے وہ علم. تو یہی بات مطلب مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے याद नहीं है। तो हज़रत ने फरमा, वो दुकानदार ने कहा, हज़रत इसका तरीका ये हो सकता है कि आप मुझसे पैसे ले लें कर्ज, और उस कर्ज के पैसों से आप ये ख़रीद ले तो मेरे लिए हाथ दरहात हो जाएगा, तो जायज़ हो जाएगा, पैसे आपके ज़िम्मे कर्ज हो जाएगा, मैं खाते में लिख लूँगा। तो मौलवी साहब ने कहा कि आपको आपके मसाइल याद है। तो ऐसे ही होता है, मतलब हमें अपनी ज़रूरत के मसाइल याद होने चाहिए। तो मुलाज़मत के भी मसाइल हैं, जो इंसान मुलाज़मत करता है उसके भी मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर जो वक्त इंसान लेता है वो उसके मतलब जो है ना, वो उसने बेच दिया, अब इसके अंदर वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय उस काम के जिसको बेचा है। हाँ जी, तो अब ये है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का पता नहीं होता या अमल नहीं किया जाता, तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, इस पर अमल भी करना ज़रूरी है। इंसान को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ मैं बेचता हूँ फिर इसमें मेरा इख्तियार नहीं रहता। हमारे हज़रत हलीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब तक मैं मतलब दफ्तर में होता हूँ तो मैं जोहर की नमाज जो उदराती थी उसमें मैं तस्बीहात नहीं पढ़ता, नमाज के बाद तस्बीहात नहीं पढ़ता। क्यों? वजह क्या है कि ये तस्बीहात नफली है और टाइम मैंने बेच दिया है, तो मैं इसमें, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज का तो मुझे इजाज़त है, फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी कोई नहीं लगा सकता क्योंकि हमारा टाइम, वो उसको हम बेच ही नहीं सकते। सबसे मुश्किल बड़ा उसूल ये है कि उसको हम बेच नहीं सकते, वो हमारा टाइम ही नहीं है। हाँ जी, इन सुना था कानत अल मोमिनीन किताबों मौकूत, तो वो तो इंसान के ऊपर लाजमी फ़र्ज़ है, मौकूत है, इस वजह से वो हम बेच ही नहीं सकते। यानी वो वक़्त अल्लाह का है, तो जो वक़्त अल्लाह का तो हम बेच सकते हैं, मस्जिद को कोई बेच सकता है? हाँ जी, तो जो वक़्त अल्लाह का है वो कोई बेच नहीं सकता, लिहाजा वो उसमें शामिल है, वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। हाँ अलबत्ता अगर गैर मुस्लिम मुल्क हो तो चूंकि उनको ही नहीं है, तो फिर उसमें हमारे जो मुसलमान हैं, मैंने जर्मनी में था तो वहाँ मतलब वो इस तरह होते थे, बाद लोग नहीं जा देते थे, तो उनका ये तरीका होता था कि वो पैसे उसके नहीं लेते थे उस वक़्त के, मतलब ये है कि वो उनसे पहले से मुआहदा कर लेते कि नमाज में पढ़ूंगा और उसके टाइम के कदर आप मुझे पैसे न दें, क्योंकि वहाँ हावर्स के हिसाब से बात होती थी, इन घंटे बेचे जाते थे, तो वो उसके पैसे नहीं लेते थे। तो वहाँ पर तो ऐसी बात हो, लेकिन जो मुसलमान ममालिक है वो तो मतलब ज़ाहिर उसको तो इख्तियार ही नहीं है कि वो जो है ना वो आपके नमाज का वक़्त ख़रीदे, नमाज का वक़्त ख़रीदा नहीं जा सकता, लिहाजा वो तो शामिल है, वो तो उसमें तो, लेकिन उसमें जो नफली अमाल है, नफली नमाज है, वो इसमें शामिल नहीं है। हाँ जी, वो हमारे लिए जो है ना वो नहीं है। तो इस वजह से मतलब हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए, ये हमारे लिए बुनियादी मसाइल हैं। इस तरह जो है ना मतलब बाज़ लोग नमाज को कज़ा कर लेते हैं अपने उसके लिए, क्योंकि वो समझते जी मजबूरी है, जब क्या करें, नहीं इतनी भी मजबूरी नहीं है। अब मैं जैसे वो मुफ्ती साहब ने वाक्य बताया कि शेख बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमा वो के रिज़्क की तलाश में जा रहे थे तो रुक गए, तो देखा कि एक माजूर चिड़िया बैठी हुई है, पड़ी हुई है, तो एक मतलब उड़ने वाली चिड़िया वो आ जाती, उनके पास दाना गिरा देती तो खा लेती। मैंने कहा जो अल्लाह इनको खिलाते तुम मुझे भी खिला दे। तो उनके शेख हजरत शेख इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तूने माजूर के अमल पर क्यों अमल किया, तूने उस चिड़िया को क्यों नहीं देखा जो उसको दाना खिला रहे थे, तुम भी कमाओ और दूसरों को खिलाओ, बजाय इसके कि तुम भी माजूर बन जाओ। तो जो अपने आप को माजूर समझते फिर माजूर चिड़िया के उस पर अमल करे ना, वो तवक्किल बन जाए, फिर उनको अल्लाह पाक खिलाएगा। इतना तवक्कुल तो लाजिम है ना कि परवाह न करे, वो नमाज पढ़ ले, अगर उसकी वजह से वो निकालते तो निकल जाए, अल्लाह पाक देगा, ये तवक्कुल तो लाजिम है ना। उस वक्त माजूर के हुक्म पर अमल करे अगर वो कहते मैं माजूर हूँ। हाँ जी, तो इस तरीके से मतलब ये है कि ये उजर उजर कोई नहीं होते, नफ्स के बहाने होते हैं, अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं दूसरी चीज़ों के लिए, नमाज के लिए रास्ते नहीं निकाल सकते। वो एक हिंदू बच्ची थी, मुसलमान हो गई तो मुझसे बैत हो गई, पढ़ रही है। तो उसने मुझे लिखा कि हमारे जो क्लास टाइम है उसमें नमाज हमारे असर का वक़्त गुजर जाता है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है और परेशान होती हूँ कि मैं किस तरीके से नमाज पढ़ूँ। तो मैंने उसे कहा कि तुम इस तरह करो कि तुम टॉयलेट के बहाने जाया करो, हाँ जी, तो वहाँ चुपके से नमाज पढ़ लिया करो। तो वो बहुत खुश हो गई, उसने कहा ठीक है। तो फिर वो इस तरीके से, अब यहाँ माजूरी है तो माजूर के हुक्म पे अमल करें, क्योंकि माजूरी है मतलब ज़ाहिर उसको नहीं छोड़ रहे, तो ज़ाहिर उस वक्त माजूर के हुक्म पे अमल कर सकती है। तो इस वजह से मतलब ये है कि इंसान को अगर माजूर हो तो माजूर के हुक्म पे ज़रूर अमल कर सकते हैं, लेकिन माजूर नहीं तो फिर गैर माजूर के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये असल में ये होता है, ये तरीके होते हैं हर चीज़ के, हर चीज़ के तरीके होते हैं, और इन चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर हमारे ना जानने की वजह से कोई इलम हमारा रह गया तो उससे नुकसान होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और सही इलम को भी हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे, और इसके हलाल से नवाजे, उसके बरकात भी नसीब फरमाए। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।